परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 7b, तलाक का प्रमाण पत्र, सत्य और मिथक। बाइबल में उल्लिखित तलाक का प्रमाण पत्र को अक्सर विवाह तोड़ने और नए संबंधों की अनुमति देने के लिए एक दिव्य प्राधिकरण के रूप में गलत समझा जाता है। यह लेख व्यवस्था विवरण 24:1-4 में प्रयुक्त सैफर क्रीतुत और मत्ती 5:31 में प्रयुक्त बिब्लियोन अपोस्तासियु के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करता है और उन झूठी शिक्षाओं को अस्वीकार करता है जो यह सुझाव देती हैं कि निकाली गई स्त्री पुनः विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। शास्त्र के आधार पर हम दिखाते हैं कि यह प्रथा, जिसे मूसा ने मनुष्यों के हृदय की कठोरता के कारण सहन किया, कभी भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। यह विश्लेषण बताता है कि परमेश्वर के अनुसार विवाह एक आध्यात्मिक बंधन है जो स्त्री को उसके पति से उसकी मृत्यु तक बांधता है, और तलाक का प्रमाण पत्र इस बंधन को नहीं तोड़ता, जिससे स्त्री उसके जीवित रहते हुए भी बंधी रहती है। प्रश्न: बाइबल में उल्लिखित तलाक का प्रमाण पत्र क्या है? उत्तर: यह स्पष्ट हो कि अधिकांश यहूदी और मसीही नेताओं की शिक्षा के विपरीत, ऐसा कोई तलाक का प्रमाण पत्र परमेश्वर द्वारा न तो स्थापित किया गया था और न ही यह विचार कि इसे पाने वाली स्त्री नए विवाह में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है। मूसा तलाक के प्रमाण पत्र का उल्लेख केवल व्यवस्था विवरण 24:1-4 में एक उदाहरण के रूप में करते हैं, जिसका उद्देश्य उस खंड में निहित वास्तविक आज्ञा की ओर ध्यान दिलाना है। पहले पति के लिए यह निषेध कि वह अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से न सोए यदि वह किसी अन्य पुरुष के साथ सो चुकी है। देखिए यिर्मयाह 3:1। वैसे पहला पति उसे फिर से अपने घर ला सकता था, लेकिन उसके साथ फिर संबंध नहीं बना सकता था। जैसा हम दाऊद और अबशालोम द्वारा अपमानित की गई रखेलों के मामले में देखते हैं, 2 शमूएल 20:3। मुख्य प्रमाण की मूसा केवल एक स्थिति को दर्शा रहे हैं, पाठ में संयोजन यदि की पुनरावृत्ति है। यदि कोई पुरुष पत्नी ले, यदि उसे उसमें कुछ अशोभनीय एरवा मिले, यदि दूसरा पति मर जाए, मूसा एक संभावित स्थिति को एक अलंकारिक उपकरण के रूप में निर्मित करते हैं। यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि मूसा ने तलाक को निषिद्ध नहीं किया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यह खंड औपचारिक प्राधिकरण है। वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मूसा तलाक को अधिकृत करते हों। उन्होंने केवल लोगों के हृदय की कठोरता के सामने निष्क्रिय रुख अपनाया। ऐसे लोग जो लगभग 400 वर्षों की दास्ता से अभी अभी निकले थे। व्यवस्था विवरण 24 की यह गलत समझ बहुत पुरानी है। यीशु के दिनों में रब्बी हिल्लेल और उनके अनुयायियों ने भी इस खंड से वह निकाला जो उसमें नहीं था। यह विचार कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी कारण से निकाल सकता है, आखिर नग्नता एरवा का किसी भी कारण से क्या संबंध? अब यीशु ने इन त्रुटियों को सुधारा। 1, उन्होंने जोर दिया कि पोर्निया कुछ अशोभनीय ही एकमात्र स्वीकार्य कारण है। 2, उन्होंने स्पष्ट किया कि मूसा ने केवल पुरुषों के हृदय की कठोरता के कारण स्त्रियों के साथ हो रहे व्यवहार को सहन किया। 3, पहाड़ी उपदेश में तलाक के प्रमाण पत्र का उल्लेख करने के बाद "पर मैं तुमसे कहता हूं" वाक्यांश के साथ यीशु ने आत्माओं के अलगाव के लिए इस कानूनी साधन के उपयोग को मना किया, मत्ती 5:31-32। नोट: यूनानी शब्द पोर्निया हिब्रानी एरवा के बराबर है। हिब्रानी में इसका अर्थ नग्नता था और यूनानी में इसका विस्तार कुछ अशोभनीय तक हुआ। पोर्निया में व्यभिचार मीखिया शामिल नहीं है क्योंकि बाइबल काल में इसकी सजा मृत्यु थी। मत्ती 5:32 में यीशु ने एक ही वाक्य में दोनों शब्दों का प्रयोग किया, यह दर्शाते हुए कि ये दो अलग अलग बातें हैं। यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि यदि मूसा ने तलाक के बारे में कुछ नहीं सिखाया तो इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी। आखिर मूसा विश्वास योग्य थे और केवल वही बोलते थे जो उन्होंने परमेश्वर से सुना था। सेफर क्रितुत का अर्थ शाब्दिक रूप से विभाजन की पुस्तक या तलाक का प्रमाण पत्र है और ये पूरी तौराह में केवल एक बार आता है, ठीक व्यवस्था विवरण 24:1-4 में। दूसरे शब्दों में मूसा ने कहीं भी यह नहीं सिखाया कि पुरुषों को अपनी पत्नियों को निकालने के लिए इस प्रमाण पत्र का उपयोग करना चाहिए। यह दर्शाता है कि यह पहले से मौजूद प्रथा थी जो मिस्र की बंधुआई की अवधि से विरासत में मिली थी। मूसा ने केवल उस चीज का उल्लेख किया जो पहले से की जाती थी, लेकिन इसे दिव्य आज्ञा के रूप में नहीं सिखाया। यह याद रखना उचित है कि स्वयं मूसा लगभग 40 वर्ष पहले मिस्र में रह चुके थे और निश्चित रूप से इस प्रकार के कानूनी साधन को जानते थे। औरा के बाहर तनाख भी सेफर करीतूत का केवल 2 बार उपयोग करता है, दोनों बार रूपक में परमेश्वर और इसराइल के संबंध को संदर्भित करते हुए, यिर्मयाहा 3:8 और यशायाहा 50:1। इन दोनों सांकेतिक उपयोगों में कहीं यह संकेत नहीं है कि क्योंकि परमेश्वर ने इसराइल को तलाक का प्रमाण पत्र दिया इसलिए वह अन्य देवताओं से जुड़ने के लिए स्वतंत्र था। इसके विपरीत आत्मिक विश्वासघात पूरे पाठ में निंदा किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह तलाक का प्रमाण पत्र स्त्री को नई संगति की अनुमति प्रतीकात्मक रूप से भी नहीं देता। यीशु ने भी कभी इस प्रमाण पत्र को आत्माओं के बीच अलगाव को वैध बनाने के लिए परमेश्वर द्वारा अधिकृत नहीं माना। सुसमाचारों में यह केवल 2 बार आता है, दोनों बार मत्ती में और एक बार इसके समानांतर मरकुस में, मरकुस 10:4। 1 मत्ती 19:7-8 फरीसी इसका उल्लेख करते हैं और यीशु उत्तर देते हैं कि मूसा ने केवल उनके हृदय की कठोरता के कारण एपिथेप्सेन प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति दी, अर्थात यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। 2 मत्ती 5:31-32 पहाड़ी उपदेश में जब यीशु कहते हैं, कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक दे वह उसे तलाक का प्रमाण पत्र दे, पर मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है पौर्नेया के कारण को छोड़कर वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है, और जो कोई तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है व्यभिचार करता है। अतः यह तथाकथित तलाक का प्रमाण पत्र कभी भी परमेश्वर का प्राधिकरण नहीं था, बल्कि केवल कुछ ऐसा था जिसे मूसा ने लोगों के हृदय की कठोरता को देखते हुए सहन किया। शास्त्र का कोई भी भाग इस विचार का समर्थन नहीं करता कि इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करके स्त्री आत्मिक रूप से मुक्त हो जाती है और किसी अन्य पुरुष से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। इस विचार का वचन में कोई आधार नहीं है और यह एक मिथक है। यीशु की स्पष्ट और सीधी शिक्षा इस सत्य की पुष्टि करती है। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर अन्य कई अध्ययन पाए जा सकते हैं इस साइट पर, परमेश्वर का नियम .org।